الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وبغي الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے 49 تک ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دیجئے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل مکمل قدرت رکھتے ہیں. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں. اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا. آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررات کبھی نہیں لائیں گے، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی. چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. صدق اللہ العظیم. اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت اور ناپائیداری ایک مثال سے بیان فرمائی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ جب زمین پر آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہ زمین جو بالکل خشک تھی، دور دور اس میں کوئی سبزہ اور گھاس نہ تھی، دیکھتے دیکھتے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. اور اس کا سبزہ بہت ہی گھنا ہو جاتا ہے، اور دیکھنے میں نہایت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے. हर जगह सब्ज़े सब्ज़ा हरियाली हरियाली नज़र आती है। इसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाता है क्योंकि बारिश बंद हो जाती है, आखिर वो पीला हो जाता है और फिर वो खुद ब खुद ही रेजा रेजा होकर हवा में उड़ जाता है। बस यही इंसान की दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल है कि दुनिया की ज़िंदगी शुरू में तो बहुत अच्छी मालूम होती है, बेकार हरी घास सूख करके रेजा रेजा हो जाती है, सारे कुवा उसके ख़त्म हो जाते हैं, सारी ताकतें उसकी फना हो जाती हैं, सारी तवानाइयाँ रुखसत हो जाती हैं, तो मिसल घास के रेजा होने के मुशाबे हो जाता है और फिर आखिरकार मौत उसको खाना चाहिए। और इससे धोखा खाना यह है कि आदमी समझे कि उसमें तो हमेशा ज़िंदा रहूँगा, ये दुनिया में जो कुछ मेरे पास है ये हमेशा रहेगा और इसको हमेशा रहने के धोखे में आकर के आखिरत को भूल जाए, अल्लाह उसके रसूल को फरामोश कर दे, अमल करना छोड़ दे, तो वही मरते ही फिर आखिरत आदमी की शुरू हो जाती है जिसका जिक्र अगली आयत में आने वाला है। मजूब साहब अपने अशार में इसी को बयान फरमाते हैं, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। ये दरअसल सबक लेने की है और इबरत लेने के लिए है, दिल लगाने के लिए नहीं है। दिल लगाने की जगह तो आखिरत है जो हमेशा रहने वाली है, और आखिर से दिल लगाने का मतलब ये है कि इस दुनिया में रह कर के आदमी नेक बने, मुत्तकी परहेजगार बने, अल्लाह ताला का फरमा बरदार बने, रोज़ी कमाए तो हलाल और जायज़ तरीके से कमाए, खर्च करे तो भी देख भाल कर हलाल और जायज़ जगह में खर्च करे, इस तरह से बाकी अहकाम पर भी अमल करता रहे, तो ये आखिरत से दिल लगाना है। और जो इस तरह से आखिरत में दिल लगाएगा तो उसकी दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए नाफ़े और मुफीद बन जाएगी, वरना बहरहाल दुनिया तो है फ़ानी और जो कुछ दुनिया में वो भी फ़ानी, जो रहने वाले हैं उनकी वो भी फ़ानी, लिहाजा इस फ़ानी से बाकी लेना चाहिए। इस फ़ानी में अल्लाह पाक ने बाकी को छुपाया हुआ है, अक्लमंद वो है जो इस फ़ानी से बाकी ले ले, नहीं है कि फ़ानी पर ही कुर्बान हो जाए और ख़ुद भी फना हो जाए। फ़ानी में जो बाकी है वो अल्लाह ताला की याद है, अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी है, अल्लाह ताला की ताबेदारी है, ज़िंदगी हर मोड़ पर अल्लाह ताला का फरमाबरदार बन कर रहे, नाफरमानी से बचे, ताबेदारी को अपना गले का हार बना ले, तो ये बाकी है। एक मिसाल और देता हूँ, जो अल्लाह पाक ने हमें उम्र दी है ये मुसलसल घट रही है और मुसलसल कम हो रही है, जो हम सांस ले रहे हैं ये गिने हुए हैं हमारे, जो भी सांस हमने ले लिया दोबारा वो नहीं आएगा, नया सांस आएगा। इस तरह से हम बचपन से सांस ले रहे हैं और वो सब गिने चुने हैं, रोज़ाना जितने भी हम सांस ले लेते हैं उतनी हमारी ज़िंदगी के सांस कम हो जाते हैं, और जितना भी वक्त हमारा गुजर रहा है मुसलसल वो कम हो रहा है हमारी ज़िंदगी में से, और हम मुसलसल फना की तरफ और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ही हमारा वक्त पूरा होगा सांस खत्म होंगे, रूह हम जिस्म से अलग हो जाएगी, जिसको मरना कहते हैं। मौत का वाक़ा पेश आ गया, फलाँ का इंतकाल हो गया, फलाँ का इंतकाल हो गया, फलाँ का इंतकाल हो गया, रोना सुनते मगर सबक नहीं लेते। जिसका भी इंतकाल हो गया, दरअसल उसकी रोज़ी ख़त्म हो चुकी थी, उसका वक्त पूरा हो चुका था, उसके सांस ख़त्म हो गए थे, उसने पूरे कर लिए, पूरा करके फिर जाने जाना, कुछ भी कोई फिर कोई ताकत रोकने वाली नहीं है हमें। तो ये जो वक्त गुजर रहा है या सांस आ रहा है और जा रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, फना हो रहा है बराबर। अब इस दौरान अगर हमने सुभानअल्लाह कह लिया, तो जिस लम्हा या जिस सांस में हमने सुभानअल्लाह कहा, ये खड़ा हो गया, ये हमेशा के लिए बाकी हो गया। बस वो लम्हा भी ख़त्म हो गया और सांस भी ख़त्म हो गया, सुभानअल्लाह कहना बाकी रह गया। सारे अज़कार का ही हाल है, एक अजीब व गरीब अल्लाह का जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब एक छोटा सा कलमा है जिसमें आधा तो आधी तो सूरह इखलास ही है। हदीस में आता है कि इसके एक दफ़ा पढ़ने से 20 लाख नेकी मिलती है, एक दफ़ा पढ़ने से 20 लाख नेकी मिलती। तो एक लम्हे में, यानी इसके पढ़ने में चंद सेकंड खर्च होते हैं, मिनट नहीं, चंद सेकंड। तो वो सेकंड तो ख़त्म हो गए, हमने ये पढ़ लिया तो 20 लाख हमारे खाते में जमा हो गए, ये बाकी है। वो लम्हे खात वो लम्हा जो था वो फ़ानी था, वो फना हो गया, वो सांस निकल गया, ख़त्म हो गया। लेकिन उसमें जो ये बाकी था कि हमने ये कलमा पढ़ लिया तो ये अब हमेशा के लिए बाकी हो गया इंशाअल्लाह ताला। ऐसे एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वल हलीमुल करीम, सुभानअल्लाह रब्बिस समावाति सबी व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वल हलीमुल करीम, सुभानअल्लाह रब्बिस समावाति सबी व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फिर पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह वल हलीमुल करीम, सुभानअल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। तो हदीस में आता है कि जो कल शख्स ये कलम 3 दफ़ा पढ़े तो शब कदर की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। अरे इसके 3 दफ़ा पढ़ने में मिनट नहीं, चंद सेकंड खर्च होते हैं, थोड़ा सा वक्त खर्च होता है, एक सांस या दो सांस इसमें लगेंगे पढ़ने में। तो ये सांस भी फ़ानी, वक्त भी फ़ानी, वो लम्हात भी और सेकंड भी फ़ानी, वो सब ख़त्म हो गया। ये पढ़ लिया तो शब कदर का सवाब बाकी हो गया, वो एकदम हमारे खाते में जमा हो गया बिल्कुल। तो इस फ़ानी से बाकी लेनी है बस। तो अल्लाह ताला ने दुनिया को फ़ानी बनाया, हम खुद भी फ़ानी हैं और जो कुछ दुनिया में वो भी फ़ानी है, लेकिन इसी में अल्लाह पाक ने बाकी को रखा हुआ है, जिसका जिक्र अभी आगे आने वाला है कि जो नेक आमाल है वो बाकी रहने वाले हैं। दुनिया से कोई आदमी उम्मीद वाबस्ता कर ले कि भाई ये दौलत तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं बेफिक्र रहूँगा, मेरी औलाद हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं इनकी बुनियाद इनके भरोसे पर मैं आराम से रहूँगा, ये मेरी मदद करेंगे, ये एक ना एक दिन धोखा दे देते हैं। इनका धोखा यही है कि माल था वो चला गया, औलाद थी वो फौत हो गई, या वो उन्होंने तोते की तरह आंखें फेर ली और बुढ़े खाने में जाकर अम्मी अब्बू को दाखिल कर दिया। तो ये तो ख़त्म, दुनिया में ख़त्म हो गए, जिनसे आस लगाई थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो आस लगाता अल्लाह ताला से, आखिरत से, अच्छे अमल से, अज़कार से, कुरान करीम की तिलावत से, तो ये आस सही माने में आस लगाने की चीज़ थी कि इसके नतीजे में जो कुछ आखिरत में मिलने वाला है वो बाकी रहने वाला है। तो ये है दुनिया का से सबक लेना, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखते हैं। इसलिए इस मिसाल को बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल मालू अल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत है। यानी आदमी को माल अच्छा लगता है, औलाद अच्छी लगती है, उसकी ज़िंदगी जिसको ये दो नेमतें दुनिया के अंदर मिलती हैं, ज़ाहिरन वो खुशहाल मालदार फारुगुल बाल साहब औलाद कहलाता है। लेकिन ये बाकी रहने वाली नहीं है, ये ख़त्म हो जाने वाली, और जो नेकियां हैं वो पायदार रहने वाली, और वो अल्लाह ताला के सवाब के एतबार से भी बेहतर हैं, और उनसे उम्मीद वाबस्ता करना भी बेहतर है। यानी दुनिया के मालो असबाब से कोई उम्मीद लगाकर बैठ जाए तो एक न एक दिन उसे धोखा हो जाता है, लेकिन नेक आमाल जो अल्लाह ताला की रजा के लिए किए जाएं, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किया जाए, और उनसे सवाब की उम्मीद लगाई जाए, वो उम्मीद पूरी होती है। लिहाजा माल औलाद अल्लाह ताला दे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उनको इस्तेमाल करें, मगर दिल न लगाएं। दिल एक है, वो एक ही के लिए है। यानी हर आदमी के सीने में दो दिल नहीं है, एक दिल है, तो एक है ना, तो वो एक ही ज़ात के लिए है, और वह अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात अकदस, कि दिल में तो उसी की मोहब्बत होनी चाहिए बस, और हमारे दिल की लौ अल्लाह ताला ही से लगी रहनी चाहिए हमा वक्त। बाकी अल्लाह ताला ने माल दिया है, औलाद दी है, आदमी इनके साथ रहे, इनको इस्तेमाल करे और इनसे नफ़ा उठाए, क्योंकि आखिरत में न तो माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ये तो बस दुनियावी ज़िंदगी का एक ज़ाहरी सहारा और ख़ूबसूरती का ज़रिया है, बाकी आखिरत में जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो बंदे के अपने ही आमाल हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल होंगे बस उतने ही वो आखिरत के अंदर कामयाब होगा, और उनसे जिस सवाब की वो उम्मीद रखेगा वो इसको मिलकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने सारे कुरान शरीफ में जगह जगह वादा फरमाया है कि जो नेक अमल करेगा हम उसको ये देंगे, हम उसको ये देंगे, उसको ये देंगे, अजर व सवाब का अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है, और सबसे बढ़कर अपनी रजा और जन्नत का वादा फरमाया है कि जो हमारी ताबेदारी करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, हम उनसे राज़ी भी होंगे और साथ में उनको जन्नत में भी दाखिल करेंगे, अपनी नाराज़गी से बचाएँगे और दोज़ख से भी उसको बचा कर रखेंगे। इसके बाद अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि तुम उस दिन का भी ख्याल रखो, यानी क़यामत के दिन का, उस दिन का भी ख्याल रखो यानी क़यामत के दिन का, जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को देखोगे कि वो खुली पड़ी है, और हम उन सबको घेर कर इकट्ठा कर देंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और सब के सब सब बांधे हुए सामने आ जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने ज़मीन पहाड़ों के चलाने का कुरान शरीफ में कई जगह ज़िक्र किया है, क्योंकि जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला इन पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देंगे, और फिर जब ये चलेंगे तो ज़ाहिर है कि ये तो सख्त है, जो सख्त चीज़ होती है फिर वो जल्दी ही टूटती भी है, इसलिए ये सब टूट फूट कर कूट पीट कर बस ये एक मिट्टी सी बन जाएगी, और फिर उसको हवा में उड़ा दिया जाएगा। तो ये बड़े बड़े पहाड़ जो हैं इस तरीके से क़यामत के दिन बारीक होकर के हवा में उड़ जाएंगे, और इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। और ज़मीन जो होगी वो बिल्कुल चटियल मैदान बन जाएगी, अब तो जमीन पर जहां देखो पहाड़ हैं, टीले हैं, दरख्त हैं, जंगल हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, मकानात हैं, छोटी बड़ी इमारतें हैं, ऐसी कोई रुकावट बाकी नहीं बचेगी। ये सब के सब जमीन में बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, बस एक चटियल मैदान हो जाएगा और ज़मीन बिल्कुल सपाट हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ज़मीन, उसमें कोई नशे व फराज बाकी नहीं बचेगा। और ये जितने भी इंसान कयामत तक दुनिया में आए होंगे और उनका इंतकाल हो गया होगा, और जो बचेंगे वो कयामत के हौलनाके में ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये सारे के सारे अपने रब के सामने सब बनाकर पेश होंगे। या तो वो ये कहते थे कि हम मरकर जिंदा होंगे ही नहीं, यानी काफिरों का ये अकीदा है, पहले भी था और अब भी है। वो कहते जो कुछ भी है, इन्हीं तो दुनिया नमो तो बनाया, बस हमारे तो यही दुनिया की जिंदगी है, बस यही हम जीते हैं मरते हैं। ये कहना कि भाई मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, फिर मैदान मैशर में इकट्ठे होंगे, हिसाब किताब होगा, ये नहीं मानते। ये है काफिरों का अकीदा, पहले भी है तब भी है। और ये कहते थे कि भाई मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं भाई पहले भी तो हमने तुमको पैदा किया है, और पहली मरतबा पैदा करना मुश्किल होता है, दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। लिहाजा जिस तरह हमने पहले तुमको पैदा किया और एक अरसे तक तुमको दुनिया में जिंदा रखा, तुम्हें खिलाया पिलाया पहनाया पहनाया, रहने के लिए जगह दी, अगर तुम मर गए तो दोबारा जिंदा करना हमारे लिए क्या मुश्किल है। लिहाजा काफिर तो दुनिया में ये कहते थे कि भाई मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा होंगे। अब जब कयामत में सारे के सारे सब बना करके सामने पेश होंगे तो वो हक्का बक्का रह जाएंगे, और उसी वक्त उनके सामने उनका आमाल नामा रख दिया जाएगा। जितने मुसलमान होंगे उनका आमाल नामा उनके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, और दाएं हाथ में आमाल नामे का मिलना कामयाबी की दलील होगी और कामयाब होने की अलामत होगी। जिसके हाथ में, जिसके दाहिने हाथ में आमाल नामा आएगा वो खुश होगा, क्योंकि उसके आमाल नामे के अंदर नेकियां लिखी हुई होंगी। और जो काफिर होंगे उनके बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, तो वो अपने एक तो हाथ बाएं हाथ में आना ही उनके नाकाम होने की दलील होगी, क्या पकड़ होगी या अजाब होगा। जब हम दुनिया में कहते थे कि भाई दोबारा ज़िंदा होना तो नामुमकिन है, दोबारा ज़िंदा हो ही नहीं सकते, अब ज़िंदा तो हो गए। जब हो गए तो और आमाल नामा भी ज़िंदगी के सामने आ गया, तो उससे भी वो बड़े खौफज़दा होंगे, और जब उसको देखेंगे तो ज़िंदगी में जो भी किया था सब उसमें लिखा हुआ होगा। इसलिए वो कहेंगे हाय हम तबाह हो गए, उसे देख कर कहें हाय हम बर्बाद हुए, ये कैसा अमाल नामा है, ये कैसी किताब है जिसने हमारे छोटे बड़े किसी अमल को छोड़ा ही नहीं, हर चीज़ इसके अंदर दर्ज है, लिखी हुई है। बहरहाल जो कुछ भी दुनिया में उन्होंने किया होगा सब उनके सामने आ जाएगा। फिर आखिर में फरमा दिया कि तुम्हारे परवरदिगार तुम पर कोई जुल्म नहीं फरमाएंगे, इंसाफ होगा कयामत में। फमैया अमल मिसकाल ज़र्रत खैर यरा फमैया अमल मिसकाल ज़र्रत शर यरा, जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो भी सामने आएगी, जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर भी गुनाह किया होगा तो वो भी उसके सामने आ जाएगा। तो ये है भैया दुनिया और आखिरत की हकीकत। ज़्यादा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। जो खेलों में तूने लड़कपन गंवाया तो बदमस्तियों में जवानी गंवाई, जो अब गफलतों में बुढ़ापा गंवाया तो बस यूँ समझ जिंदगानी गंवाई। तो अब ये ज़िंदगी गंवाने का वक्त नहीं है, कमाने का वक्त है। कमाना यही है कि अपनी ज़िंदगी की हम कदर करें और इस दुनिया की आरजी जेब और जीनत से सबक लें कि भी ये फ़ानी है, आज है कल नहीं है, औलाद है आज है कल नहीं है, माल है आज आज है कल नहीं है, हर चीज़ यहाँ की फ़ानी है, फ़ानी से धोखा ना खाए बल्कि सबक ले, और सबक ले करके इसमें जो अल्लाह पाक ने बाकी रखा है उसको इख्तियार करे। एक वाकया अल्लाह ताला की रहमत का याद आया, क़यामत में जब हिसाब व किताब होगा तो सभी को मालूम है कि वहाँ पर नेक आमाल और बुरे आमाल तोले जाएंगे, नेकियाँ और गुनाह तोले जाएंगे। अब उस तोल में तीन सूरतें होंगी, अगर नेकियाँ ज़्यादा हुई उनका वज़न ज़्यादा हुआ और गुनाह हल्के हो गए उसके मुकाबले में बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसका उलट हो गया कि खुदा ना खास्ता नेकियाँ कम हैं या बहुत हैं लेकिन वो हल्की हैं और गुनाह उसके मुकाबले में ज़्यादा वजनी और भारी हैं, पकड़ हो जाएगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमा दें तो उनकी मेहरबानी है, नहीं तो नाकामी की अलामत और दलील है ये। और किसी किसी का मामला ऐसा भी होगा कि उसकी नेकी बदी का वज़न बराबर होगा, ना नेकियों का पलड़ा झुकेगा ना गुनाहों का पलड़ा झुकेगा, तराजू का जो कांटा है वो बीच में ही खड़ा हो जाएगा, ऐसा भी होगा। तो उसके बारे में तो आम कायदा तो ये कि अल्लाह ताला उनको आराफ में भेज देंगे, आराफ तो भाई उनकी कांटा भी बीच में, अब उस आराफ में दे करके वो जहन्नम को भी और अहले जहन्नम को भी देखेंगे और बड़े डरेंगे और बड़ी अल्लाह ताला से तौबतिल्लाह करेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि अल्लाह इनसे बचाना आप हमें, कुछ भी हो जाए बस इनसे हमें दूर रखना। और दूसरी तो जन्नत और अहले जन्नत को देखेंगे तो बड़े ललचाएंगे, काश कहते काश हमारी एक नेकी ही ज़्यादा हो जाती तो हम जन्नती में चले जाते, ये देखो कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे उम्दा उम्दा इनके महलात हैं, कैसे आला आला इनके लिबास हैं, कैसे उम्दा उम्दा इनकी सवारियां हैं। तो जन्नत को देख करके दुआ करें कि अल्लाह हमें इनमें शामिल है और कहाँ रखना है। तो इसी सिलसिले का एक वाक़ा ये कि एक के शख्स के बारे में ऐसे ही होगा कि उसकी नेकी बदी बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से आम कायदे के मुताबिक उनको आराफ में जाना चाहिए, मगर अल्लाह ताला उससे ये कहेंगे अच्छा भाई तुम एक नेकी कहीं से ले आओ तो वो हम तुम्हारे नेकियों के पलड़े में डाल देंगे और तुम्हारा पलड़ा झुक जाएगा तो तुम्हें जन्नत में भेज देंगे, वो बड़ा खुश होगा और बड़ा पुरमीद होकर वहाँ से चलेगा कि भाई एक नेकी की मैं अभी लाता हूँ, मेरे तो पूरा ख़ानदान है, मेरे तो यार दोस्त भी हैं, मेरे तो माँ बाप भी हैं, मेरे तो बहन भाई भी हैं, मेरे तो अहल वयाल भी हैं, जिससे भी कहूँगा, जैसे दुनिया में एक मांगते थे 100 मिलते थे, यहाँ भी ऐसे होगा। यहाँ से वहाँ से बड़ा खुश खुश आएगा रास्ते में, जनाब उससे कोई दोस्त मिलेगा उससे अपनी कहानी सुनाएगा कि भाई ऐसा ऐसा किस्सा हुआ है भाई मेरे साथ, एक नेकी की जरूरत तो यार दिया, एक नेकी दियो तो उसका बचपन का साथी था, लंगोटी यार था, हो गया किससे बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो मैं तुम्हारा दोस्त कहाँ से आया, नहीं यार तू फलानी है, हाँ यही नाम है मेरा, दुनिया में तो हमारी तुम्हारी बड़ी पक्की दोस्ती थी, अब क्या कह रहे हो नहीं कोई नहीं किया कि मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, था ही नहीं मेरे पास। इस तरह तोते की तरह आगे फैल लेगा तो बड़ा इसको सदमा हो, यार इतना पक्का दोस्त भी आज काम नहीं आ रहा, फिर आगे चलेगा उसे भाई मिलेगा, भाई से कहेगा, भाई भी मुंह मोड़ लेगा, और आगे चलेगा उसको उसके वालिद साहब मिलेंगे, वो भी कहेंगे मेरा कोई बेटा नहीं था, कहाँ से मेरा बेटा बन गया, आखिर वालदा से मिलेगा जिसने सारी सारी रात उस पर कुर्बान की थी और अपना उसने सोना खाना सब कुर्बान किया था, उसे अम्मा इसी तरीके से एक नेकी की जरूरत है, अगर आप दे दें तो वो भी मुंह फेर लेंगी, अब बड़ा उसको सदमा होगा। इस तरह न बीवी काम आएगी, न बेटे काम आएंगे, न भाई काम आएंगे, न यार दोस्त काम आएंगे। सबसे वो आया तो 100% उम्मीद लेकर के, अब लौटेगा ना 100% ना उम्मीद होकर। अब बड़ा परेशान, अल्लाह एक नेकी लेने के लिए आया था, 100% मुझे उम्मीद थी कि जिससे भी कहूँगा ज़रूर देगा, लेकिन ये आज तो कोई भी काम नहीं आ रहा। तो मायूस होकर के वापस लौटेगा वो। तो वापस जाते जाते दरमियान में एक शख्स उसको रास्ते में खड़ा हुआ मिलेगा। वो इसको देखेगा कि ये बड़ा अफसरदा और बड़ा गमगीन वापस जा रहा है। वो पूछेगा कहो भाई क्या बात है, क्या हो गया? तो अव्वल तो ये सुनेगा ही नहीं, क्योंकि जो अपने काम ना आए तो पराया कौन काम आएगा। वो फिर ज़्यादा ज़ोर से उसे कहेगा बता तो सही क्या बात है। तो वो फिर उसके मुतवज्जे होगा और फिर अपना वाक़ सुनाएगा। तो जब वाक़ सुनाएगा तो वो सुनने वाला आदमी कहेगा कि अच्छा तुझे एक नेकी की ज़रूरत है, तुम्हें मेरे नाम अमल में है ही एक नेकी। जब तेरी इतनी नेकियों से काम नहीं चला तो मेरी एक नेकी से मेरा क्या काम चलेगा। तू ऐसा कर, ये नेकी ले और तो अपना काम कर और अपना मसला हल कर, मेरा देखा जाएगा। मेरे पास तो पहले एक नेकी है, उससे ज़्यादा है ही नहीं मेरे पास। लिहाजा वो उसको नेकी दे देगा। अब ये नेकी जिससे 100% उम्मीद थी वो तो काम आए नहीं, और जिससे कोई उम्मीद नहीं थी उससे नेकी मिल गई। तो उससे एक नेकी लेकर किया जाएगा और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे भाई आज किसने तुझे नेकी दे दी? क्योंकि अल्लाह ताला को तो मालूम था कि आज के दिन कैसे देने आ लोगों का क्या हाल होगा। हर आदमी के लिए नेकी हुई काल पड़ी हुई होगी। हर आदमी चाह रहा होगा कि सीधा ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ मुझे कहीं और से मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे भाई तुझे ये नेकी कहाँ किसने दे दी? कहा या अल्लाह मैंने तो जिनसे उम्मीद वाबस्ता की थी कि उनसे नेकी मिलेगी, वो तो कोई भी काम नहीं आया, सब ने साफ इनकार कर दिया और तोते की तरह आगे फेर ली, कोई मेरा काम नहीं आया। एक बंदा रास्ते में से मिला था जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, या अल्लाह उसने अपनी एक नेकी दे दी। ये कहा कि भाई मेरे तो एक ही नेकी है, ये तू ले जा अपना काम कर, मेरा देखा जाएगा जो होगा मामला। फिर तो उसने ऐसे खौफनाक दिन में अपनी नेकी इशार कर दी, जबकि आज के दिन कोई इशार कर नहीं सकता इल्ला माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उसके इशार पर इसकी भी बख्शिश कर देंगे जिसकी नेकी दी, और उसकी बख्शिश फरमा देंगे जिसने नेकी इशार की और अपनी नेकी कुर्बान की। इस तरह से उसके जो है बख्शिश हो जाएगी, वो जन्नत में चला जाएगा। तो यह है भाई क़यामत का दिन। तो लिहाजा हमें चाहिए कि ये सब कुछ आने वाला है। काफिर तो इसका इनकार करते हैं, सब काफिरों का तो नज़रिया ये है कि बस दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, बस यहाँ मर गए तो बस अब ख़त्म आ गए, कुछ नहीं है। लेकिन हर साहिब ईमान का तो ये ईमान है कि इस दुनिया के बाद भी एक जहान है, और वहाँ की ज़िंदगी भी एक हकीकत है, और वहाँ पर हिसाब किताब होना बरहक है। जन्नत जहन्नम बिल्कुल सच है, और अल्लाह पाक का अदल व इंसाफ बिल्कुल बजा है। जब है तो बस फिर आदमी इस दुनिया से लो ना लगाए, दिल ना लगाए, बल्कि आखिरत की तैयारी में लगा रहे, ताकि जब आखिरत में जाए तो उसके पास इतनी नेकियां हों कि उसकी नेकियों का पर्दा किसी न किसी तरीके से भारी हो जाए, और गुनाह से माफ़ी मांगता रहे और तौबा करता रहे, ताकि उसके गुनाह जो हैं वो मग़फ़रत में, बख्शिश में और जन्नत के रास्ते में रुकावट न बने। बस यहीं तक कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह, अच्छा अच्छा इरफान नाम है, इमरान भाई बैठ जाओ भाई, चुप कर बैठे, दुआ कर ले। अल्लाहु लक अलहम्द ला नुसी सलाम अलैका अंत कमा सनैत अला اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے سارے اساتذہ، اکابر و مشائخ، احباب اور جملہ متعلقین کی، جو جو حضرات قرآن شریف کا یہ درس سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مکمل مغفرت فرما، یا اللہ دنیا سے ہمیں دھوکہ کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور بجائے دنیا سے دل لگانے کے آخرت میں دل لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آخرت میں ہماری نیکیاں ہی نیکیاں بڑھا دینا، اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دینا، کہ ہمارے ترازو میں یا اللہ نیکیوں ہی نیکیاں ہوں، گناہ نہ ہوں، اگر ہوں تو وہ ہلکے ہو جائیں، اور ہماری نیکیاں بھاری کر دینا، اور اس طرح سے ہماری مغفرت فرمانا، بخشش فرمانا. یا رحم الراحمین، ہم مرتے دم تک ہمارا ایمان باقی رکھنا، اور سلامتی ایمان کے ساتھ، سلامتی اعضاء کے ساتھ، سلامتی حواس کے ساتھ دنیا سے اٹھانا. یا اللہ سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء، سلامتی حواس کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمانا، ہر شر سے پناہ عطا فرمانا. یا اللہ عرفان عمران صاحب کو بھی اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اور جتنے احباب اور متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین، آمین.
www.darsquran.com